ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 2 अप्रैल तक बढ़ाई गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न ब्लॉकों में नए विकास कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में लगभग 112 किलोमीटर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लॉयल्टी प्वाइंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत नमो भारत ट्रेन के यात्री अब मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही अब 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब सदन की कार्यवाही 2 अप्रैल तक जारी रहेगी। दिल्ली विधानसभा के चल रहे बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में आज बजट 2025-26 पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रश्नकाल से सदन की शुरुआत की। प्रश्नकाल के दौरान सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के विधायक दिल्ली के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी के पत्र का सदन में जवाब देते हुए कहा कि बजट सत्र पर केवल 1 घंटे की चर्चा करवाने का आरोप पूर्णतया भ्रामक और असत्य है। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित थे, उसमें ये निर्णय लिया गया था।
यह कहना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं है कि बजट के लिए केवल 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। कार्य मंत्रणा समिति अर्थात बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में जहां पर विपक्ष के सदस्य भी उपस्थित थे, यह निर्णय लिया जा चुका है कि बजट पर दिनांक 26 और 27 मार्च को चर्चा होगी। साथ ही सभी सदस्यों को पार्टी की सदस्यता के अनुसार बोलने का अवसर मिलेगा। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले।
इससे पहले दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बजट पर चर्चा 2 दिन के लिए बढ़ाई जाए। दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज गृह ऊर्जा और शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार वास्तविक विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के 33 दिनों के भीतर भाजपा सरकार ने दिल्ली का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। उन्होंने बीते 1 दशक में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को लेकर पूर्ववर्ती सरकार की विफलताओं को उजागर किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली की वर्तमान सरकार अनधिकृत कॉलोनियों और झुग्गी बस्तियों में बुनियादी ढांचे के विकास और जीवन स्तर सुधारने के लिए पूरी तरह से समर्पित है।
1797 कॉलोनियों में 1564 किलोमीटर सड़क बनी है 10 साल में। 1 किलोमीटर से भी कम सड़क 10 साल में बनी है एक कॉलोनी में। आपने आधी सरकार के 10 साल के कपड़े उतरवा दिए। अनाधिकृत कॉलोनी में कितना काम हुआ एक कॉलोनी में 10 साल में 1 किलोमीटर सड़क। बहुत ऐतिहासिक विकास करके गई आप।
दिल्ली विधानसभा में आज विधायकों के मानदेय बढ़ाने की मांग की गई। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इन मांगों को पूरा करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस समिति में विधायक अभय वर्मा, सूर्य प्रकाश खत्री, पूनम शर्मा और विशेष रवि को शामिल किया है। इसके साथ ही इस समिति में आम आदमी पार्टी के 2 सदस्य भी होंगे। ये समिति 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज विधानसभा को ई विधानसभा बनाने के प्रयासों पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार 100 दिन के भीतर ई विधानसभा को लागू करने का प्रयास करेगी ताकि मॉनसून सत्र ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा का उपयोग करके आयोजित किया जा सके। लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि ये विधेयक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगा और स्वरोजगार सृजन तथा छोटे उद्यमियों के विकास में सहायक होगा। इसके अलावा संसद ने बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा पहले से ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई करती है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री जोशी ने कहा कि विभिन्न खाद्य वस्तुओं के परीक्षण के लिए FSSAI के पास देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की रिपोर्ट के बाद 1410 गेमिंग साइटों को ब्लॉक कर दिया है। आज लोकसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री वैष्णव ने कहा कि सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची का हिस्सा है और राज्य सरकार के पास इसके लिए विधायी ढांचा बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस संबंध में कई कदम उठाए हैं।
जो हमारी स्टेट लिस्ट है, लिस्ट टू, उसमें एंट्री 34 में बेटिंग एंड गैम्बलिंग आता है, तो राज्य सरकारों को इसका लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाने का पावर है। कुछ राज्यों ने इसमें पहल भी की है और इसके अलावा भारत की जो नई न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, उसमें सेक्शन 112 में भी इसमें एक्शन लिया जा सकता है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे स्टेप्स लिए गए जो I4C उसके माध्यम से जहां से भी कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट के बेसिस पे जो IT इंटरमीडिएटरी रूल है उसके हिसाब से 1410 गेमिंग साइट्स को ऑलरेडी ब्लॉक किया जा चुका है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज शालीमार बाग विधानसभा के अंतर्गत पीतमपुरा के विभिन्न ब्लॉकों का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नए विकास कार्यों का निरीक्षण किया और विभिन्न ब्लॉकों में हुए विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के निदान के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की हर कॉलोनी में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इस बीच मुख्यमंत्री ने राजधानी के कई मेट्रो खंभों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मेट्रो खंभों पर लगे पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के निर्देश दिए। पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है।
ये सरकारी प्रॉपर्टी को खराब करने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर सुंदर दिल्ली चाहिए, स्वच्छ दिल्ली चाहिए तो सबको सहयोग करना पड़ेगा। मैं निवेदन करती हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी को गंदा नहीं करें। कभी जीवन में मुझसे भी कभी लगाओ तो मैं जल्दी की जनता से क्षमा मांगती हूँ, परंतु इसके बाद से हम लोग ये तय करें कि दिल्ली को खूबसूरत करना है, दिल्ली को बेहतर करना है।
सिटी SP जोन ने दिल्ली नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में लगभग 112 किलोमीटर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अभियान के अंतर्गत नीली छतरी मंदिर, हनुमान मंदिर और बेला रोड समेत कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। पहली मार्च से 24 मार्च तक चलाए गए इस अभियान का उद्देश्य अस्थायी ढांचों, झुग्गियों, तिरपालों, काउंटरों और अन्य अवरोधों को हटाना था। ये संयुक्त अभियान सिटी SP जोन के जनरल ब्रांच, भवन विभाग और मेंटेनेंस विभाग द्वारा चलाया गया। नमो भारत के यात्री अपने लॉयल्टी पॉइंट्स के जरिए अब मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा हाल ही में शुरू किए गए लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत यात्री ये लाभ उठा सकते हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
डिजिटल QR टिकट या NCMC कार्ड का उपयोग करने वाले यात्रियों के एकत्रित पॉइंट्स प्रत्येक परिचालन दिवस के अंत में यात्री के NCMC खाते में जमा किए जाते हैं। इन पॉइंट्स को यात्री अगले दिन चेक कर सकते हैं। NCMC या नमो भारत ऐप का उपयोग करके यात्रा पर खर्च किए गए प्रत्येक रुपए पर एक लॉयल्टी पॉइंट मिलता है, जिसमें प्रत्येक पॉइंट का मूल्य 10 पैसे होता है। NCRTC ने कहा है कि न्यूनतम 300 लॉयल्टी पॉइंट जमा करके यात्री उन्हें मुफ्त यात्रा के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य न केवल यात्रियों को वित्तीय लाभ प्रदान करना है, बल्कि पेपरलेस टिकटिंग के साथ यात्रा को सुव्यवस्थित बनाना और एक स्वच्छ सतत भविष्य में योगदान देना है। लॉयल्टी प्रोग्राम नमो भारत ट्रेनों के नियमित यात्रियों को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे उन्हें हर यात्रा के साथ बचत का लाभ प्रदान किया जाए। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने आज राजधानी में कोरिया गणराज्य के होनयांग विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय अकादमिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी का उद्देश्य अकादमिक कार्यक्रमों के विकास को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC और स्पिक मैके के सहयोग से 29 और 31 मार्च तक चाणक्यपुरी के नेहरू पार्क में म्यूजिक इन द पार्क श्रृंखला के तहत शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दुष्कर्म के प्रयास पर विवादित आदेश पर रोक लगाते हुए कहा है कि ये निर्णय असंवेदनशीलता का परिचायक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि अनुचित स्पर्श या अधो वस्त्र से छेड़छाड़ दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। अभियोजना पक्ष को दुष्कर्म के आरोप सिद्ध करने के लिए और आवश्यक सबूत पेश करने चाहिए थे। नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सातवें दिन पावर लिफ्टर्स और टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में दिनेश बागड़े ने एलीट 107 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दिव्येश लदानी ने रजत और जोगिंदर सिंह ने कांस्य पदक हासिल किए। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब आप सुनिए दिल्ली विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा में आज बजट पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए भाजपा विधायक डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा कि स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य, सड़क सीवर के लिए बजट में प्रावधान है। इसके अलावा महिलाओं को सम्मान राशि भी दिए जाने का संकल्प दिखता है। नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली देहात के लिए किए गए प्रबंधों पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रशंसा की। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने 1993 से 2024 तक के बजट का जिक्र करते हुए बताया कि आप सरकार में बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता था। आप विधायक संजीव झा ने बजट की कई खामियों का उल्लेख किया। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा विधायक अरविंदर सिंह लवली ने बताया कि इकोनॉमिक सर्वेक्षण संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है और ये पिछले वर्ष की आर्थिक स्थिति को बताता है। भाजपा विधायक अजय महावर ने बताया कि ग्रीन बजट में प्रदूषण बढ़ा, रोजगार बजट में लोग बेरोजगार हुए और शराब के ठेके खोले गए, जबकि भाजपा सरकार के बजट में विकास को प्राथमिकता दी गई है। आप विधायक अनिल झा, कुलदीप कुमार, सुरेंद्र कुमार ने भी बजट पर अपने विचार रखे, जबकि भाजपा विधायक संजय गोयल, आरकेपुरम से अनिल शर्मा, गजेंद्र दराल, गजेंद्र यादव, अभय वर्मा और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बजट की प्रशंसा की। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि रविवार को कैलाश खेर हिंदू नववर्ष के अवसर पर अपनी प्रस्तुति देंगे। वहीं प्रश्नकाल के दौरान विधायकों को दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। हालांकि प्रश्न पूछते वक्त आम आदमी पार्टी के विधायक व नेता प्रतिपक्ष आतिशी की गैर मौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नाराजगी व्यक्त की। इस पर शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रश्नकाल के समय आतिशी की गैर मौजूदगी बताती है कि वे कितनी गैर जिम्मेदार हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के प्रश्न पर दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि बिना किसी लाइसेंस के कोई भी दिल्ली में व्यापार कर सकता है, लेकिन खान पान के लिए नगर निगम से लाइसेंस अनिवार्य रूप से लेने होते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 11,836 ऐसे जीएसटी नंबर की पहचान की गई थी जो फर्जी है। इसमें से 8,020 के जीएसटी रजिस्ट्रेशन रद्द कर रिकवरी की जा रही है। सदन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लेखा रिपोर्ट, भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, संजय गोयल ने विभिन्न प्रतिवेदन रखे, तो वहीं नियम 107 में सूर्य प्रकाश खत्री ने डाटा एंट्री ऑपरेटर की संख्या 2 से 4 करने और इन्हें कुशल कामगार के तौर पर वेतन देने की मांग रखी। आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 26,000 रूपये दिए जाए, साथ ही विधायकों का वेतन भी बढ़ाया जाए। भाजपा विधायक अभय वर्मा ने कहा कि 2008-09 में ये डेटा एंट्री ऑपरेटर लगे थे, तब उन्हें 15,000 वेतन तय किया गया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही 2 अप्रैल तक बढ़ाई गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभिन्न ब्लॉकों में नए विकास कार्यों का निरीक्षण और उद्घाटन किया। दिल्ली नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में लगभग 112 किलोमीटर के क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लॉयल्टी पॉइंट्स प्रोग्राम के अंतर्गत नमो भारत ट्रेन के यात्री अब मुफ्त यात्रा कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।